ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी जागृत अवस्था में हैं, सभी मुस्कुराते हुए फरिश्ते। चलो आज हम सबके बीच में एक ऐसी महान आत्मा, बहुत कम ऐसे भाग्यशाली आत्माओं को इस सौभाग्य प्राप्त होता है, उस कलियुगी दुनिया के कोयले के खान से एक हीरा पारखी ने परखा, उस संसार को देखने का मौका ही नहीं दिया। बहुत ऐसे कम भाग्यशाली, उनमें से ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली हमारे राजू भाई, जो बचपन से ही उस कलियुगी दुनिया में क्या है, संसार क्या है, भगवान ने देखने का इनको मौका ही नहीं दिया। दिखाया तो अपना ही संसार दिखाया, अपने ही ज्ञान रत्नों के खिलौने देकर उन रत्नों से खेलना सिखाया। तो हम सब के हाथ में जब सवेरे सवेरे बाबा की मुरली आ जाती है, तो हम लोग जैसे ही मुरली हाथ में आते ही दिल से क्या कहते हैं बाबा को, दिल से बाबा को शुक्रिया धन्यवाद कहते हैं। ऐसे ज्ञान रत्नों को भगवान हमें सजाने का कार्य करते हैं, तो उन रत्नों को संजोग कर हर ब्राह्मण आत्मा तक, न सिर्फ भारत में, आप सोच के तो देखो, विश्व के कोने कोने में समय पर बाबा के वो महावाक्य पहुंच जाए, हर ब्राह्मण आत्मा की उन्नति होती रहे, हर आत्मा परमात्मा पिता से जुड़ जाए, तो ऐसा महान कार्य के लिए निमित्त आप हो। बाबा ने मम्मा ने मिल करके आपको सवारा है और दादियों ने आपको पालना दी है, पालना पाकर ऐसा परख करके, ऐसा तराश करके मधुबन महायज्ञ में रखा है। आप सभी जानते हो ना, जो मुरली हमारे हाथ में आती है कौन तैयार करता है, बाबा के तो महावाक्य है, उसको सुंदर से डेकोरेट करके। देखो अच्छी चीज तो होती है, अगर उसको अच्छी तरीके से पेश किया जाता है तब तो लेने का मन करता है ना। तो ये संजोगने का काम राजू भाई करते हैं। और दूसरा, आप सभी जानते हैं ग्राम विकास विभाग के आप वाइस चेयरपर्सन है। रोटी कपड़ा और मकान, पेट के लिए क्या चाहिए, रोटी। तो वो रोटी जाने वाली विषयुक्त ना हो, शुद्ध सात्विक भोजन के साथ, उसमें परमात्मा पिता की याद के साथ कोई भी जहरीला रासायनिक कोई भी खाद ना हो, इससे मुक्त हमारा अन्न कैसे हो, उसके ऊपर भाई साहब का विशेष मैंने देखा पुरुषार्थ है। और देश विदेश में जाकर इसी यौगिक खेती के लिए आप सेवाएं देते रहते हैं ग्राम विकास के माध्यम से। तो इन दोनों का समन्वय, आत्मा का भोजन और शरीर का भोजन, दोनों ही श्रेष्ठ कैसे बने, उसके लिए आप विशेष निमित्त बने हुए। ऐसे बाबा के विशेष रतन हमारे बीच में है, तो उनके मुखारविंद से हम क्या सुनेंगे, जो संडे की मुरली में आया था ना, सफल करो और सफलता पाओ। तो किस विधि, सफलता की क्या परिभाषा है, अभी तक हमने क्या सोचा है, और भगवान किस विधि से, किस तरह से हमें सफल कराना चाहता है, बाबा की नजरों में सफलता की क्या परिभाषा है, उस बात को हमारे सामने स्पष्ट करेंगे भ्राता हमारे राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के मधुबन घर में आप सभी विशेष तपस्या करने आए हैं, और यहाँ का पवित्र वातावरण, बाबा के योग की शक्तियाँ, दादियों की तपस्या का स्थान, ये पांडव भवन विश्व के लिए एक रोल मॉडल है। जहाँ आते ही हर संकल्प सफल हो जाता है, सांसें भी सफल हो जाती हैं। ऐसे अनुभव करते हो आप सभी जब से आए हो, पल पल बाबा की याद, बाबा के चरित्र, बाबा के कर्म, ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, बहुत महान भूमि, तपस्या भूमि है, जहाँ साकार में मम्मा, बाबा, दीदी, दादी और सभी वरिष्ठ जन रह करके तपस्या की, अपना हर संकल्प, श्वास, समय, शक्तियाँ सब कुछ सफल की, ऐसे स्थान पर आते ही व्यर्थ का नाम निशान समाप्त हो जाता है। कुछ व्यर्थ न, व्यर्थ वार्तालाप है, न व्यर्थ चिंतन है, कर्म तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर पल बाबा बाबा बाबा, अंदर की धुन तो यही है ना, बाबा ने क्या किया, बाबा कैसे बच्चों से मिलते, कैसे बच्चों से बहलते, कैसे बच्चों के साथ खेलते, कैसे बच्चों को रिफ्रेश करते, मुरली सुनाते, सवेरे शाम रोज चार धामों की यात्रा कर लो, पूरा बाबा का चरित्र सामने आ जाता। तो इस चरित्र भूमि में आप सब तपस्या करने आए हैं और संकल्प तो यही है कि बाबा कहते हैं बच्चे ये वक्त जा रहा है, बहुत कम समय संगम का बचा है और इस बचे हुए संगम के सुहावने समय में हमारी हर शक्ति सफल हो, एक एक बाबा का बच्चा सिद्धि स्वरूप बन जाए। सफलता का अर्थ ही है सिद्धि। लोग समझते हैं कोई रिद्धि सिद्धि होगी, बाबा ने अपने बच्चों को रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाई, मंत्र जंत्र नहीं सिखाया, लेकिन विधि से सिद्धि सिखाई। अगर हमारी यथार्थ विधि है, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म, जो कुछ हम कर्म क्षेत्र पर कर रहे हैं, अगर वो विधि पूर्वक करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, और अगर उस विधि में जरा भी कुछ अपनी ऐड कर देते हैं, दो चीजें ऐड होती हैं, एक मनमत ऐड हो जाती है, दूसरी परमत ऐड हो जाती है, दूसरों ने ऐसे कहा, वो ऐसे करते हैं, बस वहां ये विधि नीचे ऊपर हुई और सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, फिर हम सोचते हैं हमने ऐसे क्या किया जो बाबा कहता है सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बात सफल होनी ही है, लेकिन हमें तो उसका अनुभव नहीं होता। तो अमृत वेले से रात्रि तक, और मैं समझता हूं अगर आप सभी वरदानों पर ध्यान देते होंगे, जब से वरदान बनाने की सेवा बाबा ने, दादियों ने मुझे दी कि सेट करो मुरली के नीचे, तब से एक ही लक्ष्य रखा, पहली लाइन की सेटिंग, वरदान वाली लाइन की सेटिंग, और उस लाइन के अंदर विधि और सिद्धि दोनों बातों को लिया है। ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया तथास्तु हो जाएगा, भव माना हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम विधि पूर्वक चल रहे हैं, विधि पूर्वक कोई कर्म कर रहे हैं, तो सिद्धि अवश्य मिलेगी, वो सफलता मिलेगी। इसलिए सभी वरदान आप देखना, आज बाबा ने कौन सा वरदान दिया जी, शुभ चिंतक भव, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, और शुभ चिंतक किसको कहा जाता है उसकी बहुत बड़ी व्याख्या, शायद ध्यान गया होगा, कभी सोचा था सम्मान किसको कहा जाता है, लोग कैसे सम्मान देते हैं, किसी को प्यार से बात कर लिया, बिठा दिया, लेकिन बाबा ने आज सम्मान की कितनी ऊंची विधियां बताई। एक चाहता है कि मुझे सभी सम्मान से बात करें, सम्मान दें, और बाबा ने आज सम्मान प्राप्त करने के लिए विधियां बताई। सबका सम्मान किसको मिल सकता है? आज हमने बाबा को, दादियों को इतना सम्मान दिया। क्यों सम्मान दिया? क्योंकि उन्होंने पहले एक एक को सम्मान दिया, और क्या दिया कि हर एक आत्मा आगे से आगे बढ़े, जो भी उसकी कमी कमजोरियां हैं उनको न देख करके, ये कमी ये कमजोरी इसकी नहीं है, ये हमारे संगठन की कमजोरी है, कोई भी बात को छोटी को बड़ा नहीं बनाया, दिल शिकस्त न हुए न होने दिया, सदा उमंग उत्साह में रहे, उमंग उत्साह दिलाया। ये है वास्तविक सम्मान देना। और जब हम यथार्थ रूप से शुभचिंतक बन करके हर आत्मा को सम्मान देते हैं, तो रिटर्न में हमें क्या सफलता मिलती? हम सबके प्यारे बन जाते हैं, सबका स्नेह प्राप्त करते, सबके द्वारा हमें सम्मान मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। तो बाबा के जब भी वरदान सुनो, पहली लाइन जरूर नोट करना, अगर कोई सिद्धि सफलता बाबा ने कही है भाव के रूप में तो उसके पीछे विधि बताई। जैसे सफलता मूरत भाव का वरदान उन्हें मिला जिन्होंने सब कुछ सफल किया है। अगर सफल नहीं किया व्यर्थ गंवा रहे हैं और कहें बाबा का वरदान हमें मिला है सफलता का, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए विधि पर ध्यान देना। जो शक्तियां हैं हर एक के पास हैं। हमने भले बाबा को कहा ये बाबा सब तेरी हैं, लेकिन बाबा ने कहा मैं लेके क्या करूंगा, बच्चे तुम इसको अपने पास रखो, इसको संभालो, इसको बढ़ाओ, इससे सेवा करो, लेकिन इसमें अमानत में ख्यानत नहीं करना, ये प्रभु अमानत है। तन मन धन समय श्वास संकल्प जो कुछ है हम सब के पास, वो सब क्या है, ये प्रभु अमानत है, ये मेरी नहीं है, इसको हम व्यर्थ नहीं खर्च कर सकते, देखा देखी में नहीं गंवा सकते। नहीं तो कोई किसी से भेंट करते हैं परिवार में, इसने इतना खर्चा किया, इसने ऐसा किया, मैं भी करूं, कोई दिखावा करते हैं, कोई दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ये सब बाबा की संपत्ति मेरे पास है, बाबा ने मुझे संभालने के और बढ़ाने के लिए दी है, मैं इस समय ट्रस्टी हूं। समझते हो सभी प्रवृत्ति वाले भाई बहने, ट्रस्टी हो कि गृहस्थी हो, क्या हो, कौन कौन समझते हैं हम ट्रस्टी हैं, हाथ उठाओ, सच है? ट्रस्टी माना, माता जी बोलो, ट्रस्टी माना, ट्रस्टी किसको कहते हैं, ट्रस्टी माना बहुत बहुत ईमानदार, जरा भी उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते। जो मालिक की चीज है उसने हमें संभालने के लिए दी है। हमारे यज्ञ में हमारे आदरणीय रमेश भाई जो बॉम्बे में रहते थे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बाबा ने जब यहाँ पहला म्यूजियम बनवाया आबू में, तो उसने बोला बाबा किसके नाम से लें, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम एक ट्रस्ट बना करके, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना करके उसके तुम ट्रस्टी बन जाओ और तुम ले लो। रमेश भाई की माँ को मुख्य ट्रस्टी बनाया, बहुत पक्की बाबा के बच्चे थी। और फिर वो यज्ञ की जितनी सारी संपत्तियां ली गई ट्रस्ट के नाम से ली गई, पहले ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्टी बन करके रमेश भाई ने इस यज्ञ की एक एक पाई को फुल संभाला, जरा एक रुपया भी इधर उधर नहीं करने दिया, होने दिया। ट्रस्टी हैं, ईमानदार हैं, हमें इसको बढ़ाना है, इसका विस्तार करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हम सब इस बात को अंडरलाइन करें, जो कुछ है इस समय संगम ऊपर ये सब प्रभु देन है, चाहे लौकिक परिवार मिला है, चाहे सेवाएं मिली हैं, चाहे संबंधी मिले हैं, संपत्ति मिली है, सब क्या है, बाबा ने दिया है ना, क्या अपना समझते हो, जहां मेरा पन आएगा वहां पर गृहस्थी पन आ जाएगा, फंस जाओगे। गृहस्थी को एक जाल दिखाते हैं फंसा हुआ, बाबा ने कहा तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्ट व्यवहार है अभी, ग्रस्त व्यवहार नहीं है। और जो ट्रस्टी बन करके अपने परिवार में रहते हैं वो प्रभु की अमानत को बहुत अच्छी तरह से संजो करके चलाते हैं, कभी उनके पास कमी नहीं पड़ती, खुद भी ऐसे लगते हैं। आज हमारे यज्ञ के अंदर शायद 50% से भी 60-70% गरीब से गरीब बाबा के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जिनका सोर्स केवल खेती पर निर्भर करता है, वो बच्चे भी लगते हैं बड़े साहूकार हैं, क्योंकि उनके व्यर्थ खर्चे बच गए, वो अपनी संपत्ति को सफल करना सीख गए, वो व्यर्थ नहीं करते, आराम की जिंदगी जीते हैं। दो रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, सारी व्यसन छूट गए, बुराइयां छूट गई, व्यर्थ खर्चे छूट गए, अब उनका जीवन दिखाई देता कितने सफल हैं। ये सफलता स्वरूप आत्माएं हैं, एक एक पैसा उनका कौड़ी कौड़ी सफल हो रहा है। कहाँ जा रहा है? बाबा के यज्ञ में जा रहा है, सेवा में जा रहा है, स्थापना के कार्य में जा रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो संगम युग सफल करने का युग है, और जिस आत्मा ने सब कुछ सफल कर लिया, संगम पर तो उसे सफलता मिलती ही है, लेकिन पूरे कल्प में वो सफलता का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि संगम युग बीज बोने का समय है। जो जैसा बीज बो दोगे उसका फल रिटर्न पूरे कल्प में मिलता रहेगा। बाबा तो 21 जन्म की गारंटी लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे, कोई इस समय इतना निस्वार्थ रूप में बेहद की भावना रख करके सब कुछ बाबा के कार्य में लगा देते हैं, सफल कर देते हैं, तो बाबा उनको रिटर्न देने के लिए बंध जाता है। इसलिए एक एक बच्चे के हाथ में बाबा ने कलम दी है, सबके हाथ में है। माता जी है आपके हाथ में, कौन सी? श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम। ये रेखाएं दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रेखाएं खींचने की कलम हमारे हाथ में। जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो संगम पर खींच सकते हो। कौन सी? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। जिस आत्मा ने संगम पर सिर्फ ही उठ जाए सब साधन आ जाते हैं। तो कहां से आते हैं? डिमांड नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप सब उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि संकल्पों में इतनी श्रेष्ठता है, उस संकल्प में स्वार्थ भाव नहीं है, उस स्वार्थ में अपनत्व नहीं है, ये सब बाबा के लिए है, ये बेहद के लिए है। कोई ने अगर साधन दिए, थोड़े दिन की बात सुनाता हूं, अभी हमारे पास एक सुंदर मॉडल बना है योग्य खेती का तपोवन में, उस मॉडल को देख करके सरकारी अधिकारियों ने बहुत डिमांड किया कि हमारे प्रांत के किसानों को आप ट्रेनिंग दो, हम भेजेंगे किसानों को, खर्चा भी करेंगे, यहाँ रहने का भी खर्चा देंगे, आने जाने का भी देंगे, आप ट्रेनिंग देना शुरू करो। सबसे पहले शुरुआत यूपी से ही हुई, लखनऊ से ही हुई, वो किसान आना शुरू हुए। अब यहाँ पर एक को देख करके दूसरी गवर्नमेंट जागी, पहले यूपी से शुरू हुआ, फिर राजस्थान शुरू हुआ, फिर छत्तीसगढ़ शुरू हुआ, अभी उड़ीसा शुरू हुआ, फिर तेलंगाना शुरू हुआ। अब सब तरफ की सरकारें मॉडल दिखाओ उनको, बताओ कैसे योग्य खेती, प्राकृतिक खेती, बिना कोई केमिकल के, बिना कोई बाहर की चीजों के की जा सकती है। बहुत अच्छा मॉडल है, 5 लेयर का, 1 एकड़ में बनाया पहले। अब जहां पर हमको इतनी डिमांड आने लगी तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहां तो बाबा की सीजन, किसान उसी समय फ्री होता है, जब फ्री होगा तब तो आएगा, जब उसकी खेती है तब क्यों आएगा। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा ये तो ट्रेनिंग देने वालों की लाइन लगी, ट्रेनिंग लेने वालों की, और स्थान है ही नहीं हमारे पास। मैं बताऊं, 10 दिन के अंदर मेरे को 2 भवन बाहर मिल गए, सामने से ऑफर आ गई, भाई जब हमारे पड़े भवन ले लो आप, 70 लोगों के रहने की हमने व्यवस्था कर दी। कंटिन्यू ग्रुप आना शुरू हो गए, हर मास 3 ग्रुप आ रहे हैं। अब वो मकान बाहर मिल गए, अब उनके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, विधि एक के बाद एक बढ़ती है ना। सामने से एक भाई आके कहता है, भाई साहब आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है क्या? वहां से कैसे किसान आएंगे? मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ, नई गाड़ी भिजवा। कोई संकल्प नहीं, हमको विस्तार नहीं करना था, हम नहीं सोचा था कि ये सब करेंगे, लेकिन आज बाबा को कराना है, करावन हार वो है, हम सब निमित्त हैं। हमको अपने लिए क्या चाहिए? न मकान चाहिए, न गाड़ियां चाहिए, सब कुछ बाबा ने दिया हुआ है। व्यक्तिगत तो हम एक दिन भी उसमें नहीं बैठेंगे, न वहां रहेंगे जाके, लेकिन संकल्प की सिद्धि ये सफलता है। और सफलता तब मिल रही है जब निस्वार्थ भाव है, जब एक लक्ष्य है कि सबको कुछ न कुछ प्राप्ति हो, और हमें किसान थोड़ी बनाना, किसी को किसान तो खुद ही है, हम तो उसको योगी बनाना चाहते हैं। वो योगी बनेगा, प्रयोग करेगा, उसको सफलता मिल जाएगी। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्तियां क्या नहीं कर सकती हैं। आज ब्रह्मा बाबा ने अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि रच दी। ब्राह्मण सृष्टि कोई छोटी है क्या? 14 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा के संकल्प की सृष्टि है। मुखवंशावली रचना चलो बाबा जब तक साकार में थे तब तक हुई। अब बाबा अव्यक्त हो गए, और अव्यक्त होने के बाद जो उनके श्रेष्ठ संकल्प थे, शुद्ध संकल्प थे, वो सफल होने लगे। देश आएगा, विदेश आएगा, हर धर्म में ज्ञान जाएगा, सब लोग यहां आएंगे, ये बाबा का घर सबके लिए एक दर्शनीय स्थल बनेगा। ये सब किसके संकल्प? ब्रह्मा बाबा के संकल्प। बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या उनके लिए व्यवस्था, कितना बड़ा बच्चे हाल बनाना पड़ेगा, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी, ये सब ब्रह्मा बाबा के संकल्प। और जो संकल्प उन्होंने किए साकार में, आज वो सब सफल हो रहे, सफलता मिल रही है। एक भी संकल्प शायद ब्रह्मा बाबा का निष्फल नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प ऐसे रचे जो कहीं भी व्यर्थ का नाम निशान नहीं, अपनापन ही नहीं। कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी फूल नहीं स्वीकार किए। अरे बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, ये ब्रह्मा तो दलाल है, इसको क्यों याद करते हो? शिव बाबा करण करावन हार है, उसको याद करो। कभी शिव बाबा की तरफ इशारा करेगा, कभी कहे मेरे बच्चे करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। इतना निरहंकारी साकार में बन करके कुछ नहीं स्वीकार किया, कहां रहा? देखो बाबा का कमरा भी तो चलो फिर भी इसको ठीक ठाक कर दिया गया है, सीलिंग कर दिया, एसी लगा दिया, बहुत कुछ हो गया। अब जब हम आए थे 71-72 में मधुबन, एक छोटा सा कमरा, और बाबा का लेटरिन बाथरूम स्नान के लिए, वो जो वहां पर बाथरूम बने अभी उस साइड में, तो वहां पर ऐसा ही कनात लगी थी, खुला आसमान, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, बाबा वहीं जाते थे। बाबा ने एक हवाई महल बनाया, जो भवन है ना बाजू में, हवाई महल बनवाया अपने साकार में होते होते। बच्चों के लिए महल बनाया, हवा महल, हवा आएगी इसके अंदर अच्छी है। बच्चों ने बहुत आग्रह किया, बाबा यहाँ पर पानी टपकता है, बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत पुराना मकान है, 3 सीट का मकान है, आप प्लीज इस कमरे में आ जाओ। अरे बच्चे, शिव बाबा ने पुरानी जुत्ती ली है, पुराने घर में शिव बाबा आया है, ब्रह्मा बाबा को नया घर नहीं चाहिए, बच्चों के लिए। न स्थान स्वीकार किया, न महिमा स्वीकार की, न कोई साधन स्वीकार किए, सब कुछ त्याग, सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, सब सफल किया। जो भी उनकी लौकिक प्रॉपर्टी थी किसी को भी नहीं कहा, न पूछा न बताया, जो कुछ था सब समर्पित कर दिया एक धक से। वो मंडली बनाई, मम्मा को ट्रस्टी बनाया, और मम्मा के आगे, दादियों के आगे 8 ही बहनें थी, 4 माताएं थी, 4 कुमारियां थी, जिनका लौकिक कोई संबंध नहीं बाबा से। बाबा के संबंध में लौकिक में उनकी बहू, उनकी बेटियां सब यज्ञ के अंदर समर्पित हैं। किसी को ट्रस्टी नहीं लिया। जो कन्याय माताएं सत्संग में आ रही उनमें से चुना, और उनको अपने सारी संपत्ति एक धक से समर्पित कर दी। कितना बड़ा प्रॉपर्टी, कितना बड़ा सोने हीरे जवाहरात का बिजनेस थोड़े समय में ही समेटा, और समेट करके एकदम स्वाहा। पूछा भी नहीं बच्चे कहां से चल रहा है, कहां खर्च कर रहे हो। 14 साल तक यज्ञ चला, धन सफल किया, संपत्ति सफल की, तन सफल किया। इतनी बड़ी आयु में 60 साल में शिव बाबा आए हैं, 74 साल में आबू, 74 साल की उम्र में माउंट आबू आए ब्रह्मा बाबा 74 ईयर्स की। और एकदम पुराना मकान ब्रज कोठी लिया, कोठी थी, रोड नहीं थी, बाबा खुद लेकर के झूमर कूट रहे हैं रोड को, निक्कर पहन करके। शक्ति, तन की शक्ति सफल की, मन की शक्ति सफल की, धन सफल किया, एक एक श्वास सफल किया और क्या बन गया, नरसिंह नारायण बन गया। सफल किया तो ये सफलता मिली, कौन सी सफलता चाहिए, मनुष्य देवता बन गए। कहते श्री लक्ष्मी धन देती है, बाबा कहता ये बेटी तो कभी कुछ लाई नहीं थी लेकिन धन देवी ये बन गई। मम्मा के लिए बाबा कहते हैं ना, धन एक पैसा भी नहीं लेके आई लेकिन इतना गुप्त धन का दान किया, ज्ञान धन दान किया जो श्री लक्ष्मी बन गई। और दान करके कभी ये नहीं कहा कि मैं कर रही हूं मेरा है, प्रभु प्रसाद है। कोई भी मम्मा की कभी महिमा करे, मम्मा आज आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, आज बहुत अच्छी पालना दी, अरे बच्चे मैं क्या कर रही हूं, बाबा करता है, बाबा के बच्चे हैं ये, तो उसने प्रसाद हमें दिया हम तो बांट रहे हैं। जरा भी उसमें मैंपन नहीं आया तो उनका सब कुछ सफल हो गया। और सफल किया इसलिए वो सफलता की देवी धन देवी बन गई। ऐसे धन देवी बनी क्या जो आज सब पूरे भक्त धन देवी के आगे खड़े होकर धन मांगते हैं, कितनी प्यार से स्वच्छता से उसकी पूजा करते, सफाई करते, घर घर का कोना कोना साफ करते। और दिवाली पर क्या करते हैं, धन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, दीपक जलाते हैं, स्वच्छता करते हैं। और धन देने वाली देवी संगम पर हमारी माँ सरस्वती माँ, जिसने इतना धन इकट्ठा कर लिया जितना बाबा से लिया और खूब दान किया और उसका भरपूर हो गया। स्थूल धन नहीं दान किया, स्थूल धन तो था ही नहीं उस समय यज्ञ के अंदर। जब मम्मा ने इतनी सेवाएं की हैं भारत के अंदर, बाबा ने एक बार पूछा था, बच्चे मम्मा नंबर वन क्यों चली गई, क्या ऐसा पुरुषार्थ किया जो श्री कृष्ण के आगे भी श्री राधे आ गई, श्री नारायण के पहले श्री लक्ष्मी आ गई, क्या पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा ये मेरी बच्ची गंभीरता की देवी थी, इतनी गंभीर, सब कुछ किया लेकिन किसी के आगे वर्णन नहीं किया। आज थोड़ा सा भी कोई करता है, मैं करता हूं, मैंने किया, कोई कहेगा मैंने सेंटर बना के दे दिया, मैंने गाड़ी लेके दे दिया, मैंने ये कर दिया, किया और कच्चा फल खा के खत्म कर दिया, सफल हुआ क्या, सफल किसको माना जाएगा। बाबा कहते इस हाथ से करो इसको भी पता न चले, वर्णन करने तो दूर की बात है। तुरंत दान फॉलो फादर, चेक करना, चार खजाने, सबसे बड़ा खजाना संकल्प का खजाना है, सफल हो रहा है। एक एक संकल्प, वही संकल्प उठे जो अपने और दूसरों के कल्याण के लिए, कोई भी ऐसा संकल्प न उठे जो व्यर्थ चला जाए। और सबसे अधिक सबकी कंप्लेन ब्राह्मणों की, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। कौन ऐसा है जो कहता व्यर्थ हमें आता ही नहीं है, कोई ऐसा बैठा यहां, चेक करेंगे तो पता चलेगा, ऐसे कहेंगे तो हाथ उठा सकते हैं नहीं। व्यर्थ देखने की आदत, व्यर्थ सोचने की आदत, व्यर्थ बोलने की आदत, और जहां देहमान मिक्स हो गया उसके अंदर व्यर्थ में, देह को देखना, देह का चिंतन करना, देह पर ही ध्यान देना, देह का ही श्रृंगार करना, देह के लिए सब साधन उपलब्ध कराना, माना वो सब इविल है, व्यर्थ है। और उस व्यर्थ को अगर कोई निष्ठाप कर दिया, आत्मा को देखना है, आत्मा का चिंतन करना है, बहुत अच्छा स्लोगन बना हुआ, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर कोई अपनी उन्नति के लिए, अपने जीवन में सफल जीवन बनाने के लिए प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है अपनी घोट तो नशा चढ़े। स्वचिंतन करो, कोई क्या कर रहा है करने दो जो कर रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर देखने की आंखें बंद कर ली, व्यर्थ देखने की आंखें, ये आंखें तो बहुत अच्छी हैं, इनको ऐसे बंद नहीं करना, लेकिन जो व्यर्थ दिखाई दे रहा है बाबा कहता है उसको साइट सीन को, व्यर्थ को बंद करो, देखना नहीं है। रंग हो रहा है नहीं दिखाई देगा, बाबा कहता दिखाई देगा, देखो लेकिन समाओ नहीं अंदर, वर्णन नहीं करो। समा जाएगा तो घुट जाओगे, घुटन होने लगेगी, दिखाई तो देगा ना, हो रहा है व्यर्थ। मुझे उसका चिंतन करके वर्णन करके पाप का भागी नहीं बनना है। करने वाला कर रहा है, मिसाल मान लो इसने कोई गलत काम किया, हमने देखा या हमको कोई ने सुनाया, हमने उसको समाया नहीं, लेकिन उसको हमने 5-10 लोगों को बता दिया, पाप किसके ऊपर? करने वाला हो सकता है रियलाइज करके चेंज कर ले, लेकिन देख करके सुन करके एक दूसरे के पास पहुंचा करके अगर किसी ने वायुमंडल को भारी कर दिया, वातावरण को खराब कर दिया, उसके पर सबका दृष्टिकोण बदल दिया, तो सबसे बड़ा पाप उसके ऊपर चढ़ गया, व्यर्थ जा रहा है। और ये व्यर्थ की लीकेज ब्राह्मण जीवन में उन्नति होने नहीं देती है, सफल बनने नहीं देती। अगर कोई अपने जीवन को सफल करना चाहता है, ठीक है, जो करेगा वो पाएगा। हर एक को बाबा श्रीमत दे रहा है, श्रीमत स्पष्ट है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और बाबा ने यह भी कहा है कि हर एक को सुधारने की जवाबदारी केवल मेरी है, ठेका मेरा है, तो मैं जवाबदारी नहीं दे किसी सुधारने की। इसको ध्यान पर रख करके मुझे अपने को सुधारना है, मुझे अपने को पढ़ाना है, मुझे अपने को संपन्न बनाना है, बाकी कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, तब हमारा संकल्प सफल होगा। अगर दूसरे में हम लग गए तो हमारे संकल्प व्यर्थ चले जाएंगे। शुभ चिंतन है, कल्याण की भावनाएं हैं, लेकिन कल्याण की भावना ये नहीं है कि हम किसी की व्यर्थ को सुने, देखें और वर्णन करने शुरू कर दें, हम इसको सुधार देंगे, हम कौन होते सुधारने वाले। बहुत गहरी परिभाषा है सफलता की। हमारा एक एक संकल्प नई सृष्टि की रचना के लिए है, हम संकल्प से स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, इसलिए वही संकल्प उठें जो हमारे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं, भले के लिए हैं। कोई ऐसे संकल्प नहीं करना, कोई भी किसी के प्रति भी, कोई हमारे लिए भले कुछ बुरा कर रहा है हम जानते हैं, फिर भी ठीक है, इसका हिसाब किताब पार्ट पूरा हो रहा है, बस मुझे उसमें नहीं जाना। तो अगर संकल्प की शक्ति को हमने बचाया और शुभ चिंतन में लगाया, स्वचिंतन शुभ चिंतन में, तो सफल हो गया। और सफल हो गया तो सिद्धियां मिलने लगी, जो संकल्प किया वो होने लगा। ऐसे होता है ऑटोमेटिक, जैसे सब मशीनरी चल रही है, करण करावन हार बाबा करा रहा, इतना वृद्धि इतना विस्तार, साकार में तो कोई बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, सब एडवांस पार्टी में चले गए, लेकिन बाबा का कार्य दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि को पा रहा है, सेवाएं वृद्धि को पा रही। एक बार ऐसे ही दादी जी हमारी, जब अंत में थोड़ा समय माउंट आबू नहीं आती थी, तो हम लोगों को रोज भेजती थी ऊपर, आप जाओ शाम को, रात को रहना, सब हाल चाल देखना, सुबह आ जाना। 2-3 साल ऐसे हम अप डाउन करते थे। तो एक दिन मैं जब यहां से गया मिलने के लिए, कहती जाते ही पहले मेरे से मिलो फिर जाना करो, तो ऐसे आंख बंद करके बैठी थी। बहुत देर तक मैं बाजू में बैठा रहा, फिर मैंने दादी को हिलाया, मैंने दादी अच्छा तुम आ गए ऊपर से? कहा दादी सब ठीक है, पांडव भवन ठीक है, ज्ञान सरोवर ठीक है, एक एक बात पूछती गई, हमने सब में मैंने उत्तर दिया, दादी बहुत अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो ये सब कहा ना, तो कहती कैसे ठीक चल रहा है? अब कैसे का उत्तर मैं कैसे दूं, क्या दूं? तो मुझे याद आई बाबा की बात, मैंने कहा दादी बाबा ने कहा था एक दिन आप बच्चों के संकल्प से पूरे यज्ञ की कारोबार चलेगी। आज मुझे ऐसे लगता है आप यहां बैठी हैं, आपके इतने शुभ संकल्प हैं, इतने श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो पूरा यज्ञ बहुत अच्छा निर्विघ्न चल रहा है। जो मैंने ये बोला, मेरे को ऐसे आंख दिखाई, क्या बोला? शायद गलती हो गई, फिर रिपीट कर दिया मैंने। कहती है अरे मुट्ठा मेरे संकल्प से चल रहा है, तुम भूल गया बाबा को? बाबा ऐसा बैठा है ऊपर जो सारे यज्ञ को चला रहा है, पूरे यज्ञ को हैंडल कर रहा है, हम लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। इतनी निरहंकारी, इतनी नम्रचित, जरा भी अपनी महिमा स्वीकारने की। आज हम सब जानते हैं पूरा यज्ञ कैसे चल रहा है, हमारे बड़ों की शुभ भावनाओं से। दादी के अव्यक्त होते ही जानकी दादी आई, विदेश का अनुभव था, देश का नहीं था। 40 साल उन्होंने विदेश में सेवाएं की, विदेश और देश की हैंडलिंग में दिन रात का अंतर। यहां आई एक ही धुन, बाबा का यज्ञ जैसे दादी ने भरपूर रखा, निर्विघ्न रखा, कुछ भी करना पड़े इसमें कमी नहीं पड़नी चाहिए। इकोनॉमी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन इसके लिए इतनी मेहनत, इतनी बड़ी उम्र में इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, क्यों जाते हो दादी अभी इतनी बड़ी उम्र हो गई? अरे बाबा के बच्चे भंडारा भरपूर करते हैं, हम जाते हैं तो भंडारा भरपूर हो जाता है। माना भंडारा और भंडारी में कोई कमी न दिखाई दे, इसलिए इतनी शुभ भावना है उनकी। आज उनके संकल्प शक्ति से एक दिन कहती है मेरे को ऐसे, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहते थे दादियों के लिखने पढ़ने में, कहती है राजू दादी ए बाबा ने सबको तो बुला लिया, दादी भी चली गई, ये भी चले गए, मुझे भी यही नहीं देता, मुझे नहीं बुलाता है। तो मैंने हंसते हुए कहा दादी आपको वीजा नहीं मिलेगा, आप अंत तक रहेंगी। कहती क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी कोशिश करती हूँ बाबा मुझे वीजा दे। 103 साल की उम्र थी उस समय। दादी आपको वीजा नहीं देगा। कहती क्यों नहीं देगा? हमने कहा आप बैठी है ना, तो आप बैठ, आपके बैठने से भंडारा भंडारी से भरपूर है। इतने शुभ संकल्प हैं जो देश विदेश सबको आता है कि दादी बैठी है, मैं अपना कुछ सफल करूं। सब सफल कर रहे हैं आपके नाम से, इसलिए बाबा आपको नहीं बुलाएगा। चलो बुला लिया, क्या उनके शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से यज्ञ नहीं चल सकता है? हमारी तो ये भावना है कि वर्तमान में ये त्रिमूर्ति दादियां, हमारी रतनमयी दादी भी, लेकिन ये तीन दादियां जो थी, गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाशमयी दादी, इन तीनों दादियों के रग रग में बाबा यज्ञ मधुबन भरा हुआ था। दादी जानकी जब शुरू शुरू में लंदन में गई हैं, बाबा से बोलने लगी, बाबा मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं विदेश में जाके क्या करूंगी? बाबा ने कहा बच्ची तुम वहां जाके मधुबन का दूसरा मॉडल बनाना। बस नशा चढ़ गया, दूसरा मॉडल बनाऊंगी। गई तो एक दो कमरे का मकान, दो कमरा भी नहीं था, एक ही कमरा और एक सिटिंग रूम। मैं गया दो बार वहां लंदन में, छोटे से कमरे में बैठ करके, ना संदल है ना कुर्सियां हैं, वंडरफुल रीति से 74 में जाके तपस्या की, और उस तपस्या के फल स्वरूप मधुबन से भी बड़ा विस्तार कर दिया उन्होंने। गोल्ड डायमंड हाउस, ग्लोबल हाउस, 60 एकड़ में रिट्रीट हाउस ऑक्सफर्ड के अंदर। तपस्या का बल, त्याग का बल, और शुरू से एक लक्ष्य रखा, जो भंडारी में आया पहले दो एक साल के अंदर, 80 पौंड आया है, जाओ 40 मधुबन पहले भेजो। दादी कैसे यहां चलेगा? यहां जैसे भी चलेगा, सूखी रोटी खाएंगे, पहले बाबा के यज्ञ में जाना चाहिए। एक एक पैसा सफल करती गई और उसका रिटर्न मिलता गया। यज्ञ में सफल किया, खुद किया और सबका कराया। जो आए सिंधी लोग, यज्ञ में भेजो, मुझे नहीं चाहिए, बाबा के पास यज्ञ में भेजो। सबका सफल करा करके इतनी बड़ी सफलता है। अगर आज कोई विदेश में जाएगा, देखेगा जहां दादी के कदम पड़े वहां एक बड़ा मधुबन बन गया। जिधर कदम रखे, अमेरिका में गया 300 एकड़ में बाबा का रिट्रीट सेंटर पीस विलेज, ऑस्ट्रेलिया में 3 रिट्रीट सेंटर्स, जहां दादी गई, जो शुभ संकल्प था उन्होंने अपना संकल्प, अपनी संपत्ति, जो उनको संपत्ति आई या श्वास समय, सब कुछ सफल किया। और सफल का परिणाम चारों तरफ सफलता की ही माला हमें पहना दी। चारों तरफ सफलता दिखाई देती है। ये हमारी दादियों के सफल करने का फल जो हम आज सब देख रहे हैं, इतना बड़ा मानसरोवर, आनंद सरोवर, शक्ति सरोवर अभी बन रहा है, शांतिवन बन गया, 20,000 लोगों की व्यवस्था हो गई, सफल किया सब कुछ, कुछ भी व्यर्थ नहीं किया, जो आया बाबा के बच्चों का सब सफल होना चाहिए, खाने पीने घुमाने में नहीं खर्च किया, एक एक चीज एक एक कौड़ी सफल किया, और इतनी खुशी खुशी से किसी ने किया है, हाँ बच्चों का आया है, सब सफल हो जाए। हम सभी भी ध्यान दें, जो कुछ है, जो शक्तियां हैं, किसी से लेना नहीं और व्यर्थ नहीं करना, बस श्वासे हैं बाबा की याद में, बाबा बाबा बाबा, दिल ही दिल में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, एक एक श्वास सफल हो रही है। और संगम का यह अमूल्य समय, इधर बैठे उधर बैठे गप्पा जी, इधर की बातें उधर की बातें, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? संगम का अमूल्य समय है। मुझे तो एक बहुत ध्यान रहता है, मान लो हमारी सेवाएं पूरी हो गई, हम कमरे में गए, हमारे पास टाइम है, ऐसे नहीं मोबाइल खोल करके हम सारी साइट देखते रहे, ये क्या हुआ, क्या इधर हुआ, उधर हुआ, क्या चल रहा है। अरे इतना अच्छा साहित्य बाबा ने दिया है, बाबा के ज्ञान साहित्य पर थोड़ा ध्यान तो दो, मन एकदम समर्थ बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन अगर व्यर्थ देखने की, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ के समाचार की लेन देन करने की आदत है, तो समय भी जा रहा है, संकल्प भी जा रहे हैं, और हमारी संपत्ति भी तो जा रही है, और स्वास्थ्य भी जा रहा है। किसी को कहो कि मोबाइल में इतना टाइम नहीं दो, उसको खराब लगता है, लेकिन जब देखो तब वो मोबाइल लेके बैठे हुए रात को 10-10-11 बजे तक, अमृत वेला क्या करोगे? सब शक्तियां व्यर्थ कर रहे हो, सफलता कहां से मिल जाएगी? को बचाओ, कंट्रोलिंग पावर रखो, इतनी कंट्रोलिंग पावर हो, चलो देखने की चीज जो है जरूरी है, फोन करना है, आज हम लोगों के पास साधन बाबा ने दिए हैं, क्योंकि हम पूरे इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं। अभी मैं आ रहा था, फिजी से फोन आ रहा है, आज कहीं से फोन आ रहा है, फ्री है, हम भी बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, साधन इतने अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन उनका प्रयोग सही रूप में है तो सफल है, और अगर गलत हो रहा है तो हम निष्फल कर रहे हैं, उसका बोझ चल रहा है, और एक के साथ कई चीजें निष्फल हो रही है, व्यर्थ जा रही है। समझदार बाबा के बच्चे हर संकल्प पर ध्यान देते हैं, एक एक सेकंड पर ध्यान देते हैं, समय हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, है समय हमारे पास, मान लो है, अगर खाली छोड़ोगे तो व्यर्थ आएगा ही। अच्छे अच्छे संकल्प की रचना करो, अच्छा संग करो, अच्छे वातावरण में चले जाओ, अच्छा साहित्य पढ़ लो, आपके विचार शुद्ध शक्तिशाली श्रेष्ठ बन जाएंगे, और आपका समय सफल हो जाएगा। अब धन बाबा ने स्थूल में भी दिया है, कोई कोई अपने परिवार के पीछे इतना धन लगा रहे हैं। एक भाई मिला परिवार का, बाबा का अनन्य बच्चा था, कहता है मेरे दान के संस्कार हैं, और ये दान कोई गलत थोड़ी है, क्या करते हो? हम चैरिटी में देते हैं। हमने अच्छा चैरिटी में देते, अच्छी बात है, बाबा के घर में भी देते ले चैरिटी। हमने क्या चैरिटी के लिए करते हो? जहां कैंसर के बीमार आते हैं ना, मैं कैंसर हॉस्पिटल में सहयोगी हूं। मैं कभी उनके पोता मेल पर, उनके अकाउंटेंट या उनके कार्यकर्ताओं पर ध्यान गया है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं उस भ्रष्टाचार में भी आपका पैसा कहीं जा रहा हो? कहते ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने सोचा तो नहीं है, बाबा आज हमें दान करना सिखाया है, ऐसा नहीं है नहीं करना, ब्रह्मा बाबा के तो संस्कारों में दान था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब ज्ञान प्राप्त किया उस दिन से लेकर कहा बच्चे किसी को पैसा नहीं देना, पैसा दे करके उसकी आदतों को बिगाड़ दोगे, भूखा है भोजन खिलाओ अच्छी तरह से। हम लोगों ने एक बार क्या किया, अपने ग्राम विकास के अंदर गांव वालों के गरीब थे बच्चे, तो एक बहुत अच्छा सहयोगी भाई आया कि हम इन सब के गांव में 25-30 घर थे, सबको हम सिलाई मशीन दिला देते हैं, माताएं सिलाई करेंगी, रोजगार हो जाएगा और सब अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, कोई देना चाहे मैं क्यों मना करूं। उसने 25-26 सिलाई मशीनें वहां बांटवा दी गांव में, माताओं को सिखवा दिया, ट्रेनिंग भी दिलवा दी, सब ठीक हो गया, सेट हुआ। एक साल के बाद ही फिर से इंक्वायरी की गई तो उस गांव में एक भी सिलाई मशीन नहीं थी। जब पूछा गया माताओं से कहां गई हो, हमारे पति लोग शराब पीते हैं, बेच करके शराब पी लिया, दान कहां गया हमारा, शराब में चला गया। पाप किसके ऊपर पड़ा, देने वाले पर। बहुत कर्मों की गहन गति है, इसलिए हमारा विश्वविद्यालय इतनी ऊंची सेवाएं कर रहा है, हम उसके चिंतन धारा को चेंज करते हैं। जब तक उसका चिंतन चेंज नहीं हुआ, चरित्र ठीक नहीं हुआ, तब तक आप पैसा देकर के उसकी आदतों को बिगाड़ेंगे, बनाएंगे नहीं। बहुत गहरी कर्मों की गहन गति है। एक बार हमारा जब ये नया प्रोजेक्ट शुरू है प्राइम मिनिस्टर की योजना में कि हर किसान के खाते में 2,000 रुपया डाल दो, बीज लाएंगे, अच्छे खाद अच्छे बीज लाएंगे, खेती में प्रगति होगी, आमदनी दुगनी होगी, तो बड़े शुभ भावना से उन्होंने सबके खातों में 2,000 रुपया डलवाए। लेकिन जिस दिन 2,000 रुपया आ गए सबके खाते में, तो हमारी एक मीटिंग चल रही थी, मैं पुरी में था उस समय, तो एक कमिश्नर साहब आए थे। कमिश्नर साहब ने भाषण शुरू किया, कहते भाई जी कल ही सब किसानों के खाते में 2,000 रुपये आए, सब बड़े खुश थे, लेकिन आज हमारे शहर में हर शराब के ठेके पर लंबी लंबी लाइन लगी। पैसा किस लिए भेजा गया था और जा कहां रहा है? व्यक्ति का चिंतन क्या है, व्यक्ति की विचारधाराएं क्या है? पैसा देने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, इसलिए पैसे को बहुत सही रूप से यूज करना, नहीं तो उसमें कहीं कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लेकिन गुप्त रीति से हमारा हिसाब किताब बनता है, पाप बन जाता है। ऐसी कर्मों की गहन गति बाबा ने सिखाई है। सब कुछ सफल करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, लेकिन कहां सफल करना है उस पर ध्यान देना, किस रीति से सफल करना है। आज यज्ञ के अंदर लोग पैसे की बजाय कहते हैं हम अन्नदान करेंगे। अब हमारे यज्ञ में हम लोग पहले गंगानगर इधर सब जाते थे, बटिंडा इस साइड में गेहूं लेने के लिए, अभी तो पंजाब के गेहूं से सब डरने लगे, लेते नहीं है। लेकिन हम शुरू शुरू में जब मधुबन में आए तो हम गंगानगर से, बटिंडा से, अबोहर से, इधर से ही गेहूं लाते थे। देखा कि पंजाब का गेहूं बंद कर दिया, हमने नहीं खाना, इधर लेना, तो फिर गुजरात वालों ने सोचा हम करेंगे। आज बाबा के यज्ञ में गेहूं, चावल, गुड़, कई ऐसी चीजें हैं जो सबके सहयोग से अपने आप आती है, खरीदना नहीं पड़ता। सफल करने की भावना है, उनको सफलता मिल रही है। कैसे कैसे, कितनी गुप्त बातें मैं आपको सुनाऊं यज्ञ की, कैसे बाबा ने बच्चों को टच किया है और बच्चों के अंदर आता है मेरा सब सफल हो। बस आते हैं, इतने लोगों की पालना होती है, इतने लोगों के पेट में उनका अन्न जाता है, कितनी उनको दुआएं मिलती होंगी। उनको योग लगाने में मेहनत लगेगी, अपने आप योग लग जाएगा। आंतरिक दुआएं, खुशी जो आत्मा को प्राप्त हो रही है, वही तो योग का आधार है। इसलिए आप सब ध्यान देना कि हम सबको जो शक्ति है, जिस प्रकार की बाबा ने हमें दी है, वो सब व्यर्थ में न जाए, देखा देखी में न जाए, ईर्ष्या के वश न जाए, सब सफल हो। और सफल करोगे तो हर कदम में संगम युग पर भी सफलता मिलती रहेगी, और भविष्य श्रेष्ठ तो बना ही हुआ पड़ा है, उसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का जिसने संगम पर अपना समय सफल किया, वो पूरा समय राज्य करेगा। जिसने अपने श्वासें सफल की, वो कभी भी अकाल मृत्यु को नहीं पाएगा, अमर हो जाएगा। जिसने संकल्प किया है, जिसने बुद्धि का दान किया, योग बुद्धि लगाई, उसको कभी किसी वजीर की, किसी मंत्री सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गुणों का दान करो तो आधा कल्प तो गुण मूर्त बनोगे ही, लेकिन आपके गुणों की भक्ति काल के अंदर भी पूजा होगी, कीर्तन गाए जाएंगे। तो वर्तमान समय सफल करने का समय है। जो शक्ति बाबा तूने दी है, केवल तेरे ही काम में सफल हो जाए और वो नई दुनिया बनाने में लग जाए। स्थापना का बहुत बड़ा कार्य गुप्त रीति से बाबा कर रहे हैं, करा रहे हैं और बच्चों की पाई पाई के सहयोग से सतयुग बन रहा है। तो हम सबका सफल हो इस पर ध्यान देना, कुछ भी निष्फल न जाए, जहां जा रहा है उसको ब्रेक लगाओ। सबसे बड़ी ब्राह्मण जीवन में लीकेज है व्यर्थ की, और वो लीकेज सब शक्तियों को घर का नम कर देती। कभी कभी पता नहीं चलता लीकेज हो क्यों गई, कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं तो लीकेज हो जाती है। कोई ऐसी बात मन को लग गई, बस व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो गए। फिर जितना भी ज्ञान सुन लो, जितनी भी मुरलियां सुन लो, जितनी भी योग कर लो, सब शक्तियां बह के जा रही। एक बार आत्मा डिस्टर्ब हो गई किसी कारण से भी, लीकेज हो गई। इसलिए ध्यान देना, कभी भी मन को डिस्टर्ब होने नहीं देना, मूडी नहीं बनना। बस मूड खराब होने से, मूडी बनने से सब शक्तियां जितनी बाबा से आती हैं वो सब बह जाती हैं, वो सफल नहीं होती। एक रस खुशनुमा मूड रखो, जो बाबा दे रहा है वो दूसरों को देते चलो, अपने जीवन में धारण करते चलो, सब सफल हो जाएगा। तो सफलता किसका? जन्म सिद्ध अधिकार, बोलो। हम सब का जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, और विधि है सफल कर लो, बस। ठीक है, ओम शांति।